आगे देखिए अगला टॉपिक क्या है, झगड़ा और झूठ छोड़ देना और अच्छा अखलाक अपनाना। क्या छोड़ना है? जब मैं कोई लफ्ज़ बोल रही हूँ ना, आपके सामने भी लिखा होगा, उस वक्त आप इसको फिर देखिए कि एक-एक बात मेरे अमल के लिए आ रही है और क्या मैं ये सारे काम कर रही हूँ जिसका यहाँ हुक्म दिया जा रहा है। तो अब क्या छोड़ना है आपने? मैंने नंबर एक झगड़ा छोड़ना है, अगर कभी करते हैं, झूठ नहीं बोलना और अच्छा अखलाक अपनाना है। इन सारी चीज़ों को जिस एक हदीस में हम देखेंगे वो क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको। हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लम ने फ़रमाया, अना ज़ाइमुम बि बैतिन फ़ी रौबदिल जन्ना। जहाँ रुकिए ना, यहाँ एक कौमा लगा लें, यहाँ एक जुमला पूरा हो गया। किसके लिए है? लिमन तरकल मिरा वइन काना मुहिक्का। कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह मुझे सबसे ज़्यादा और आपको मुझसे भी ज़्यादा इस पे अमल की तौफीक दे। और तीसरी बात, वबी बैतिन फ़ी वसतिल जन्नती लिमन तरकल कज़िबा वइन काना माज़िहा। और अगली बात, वबी बैतिन फ़ी आलल जन्नती किसके लिए? लिमन हसुना खुलुकहु। मेरे तो दिल में ख्वाहिश आ रही है कि ये हदीसें याद कर लें आप सारी। 104 हदीसें हैं टोटल मेरा ख्याल है इस पूरी बुक में, और सारी हदीसें आपको मुझे जन्नत के काबिल ही बना रही हैं ना। कोई गलत चीज़ तो है नहीं है, कोई ऐसी बात तो नहीं। चलें जितना भी वक्त लगेगा। देखिए कुछ हदीसें तो याद करनी होती है ना। 120 हदीसें हैं टोटल, नियत कीजिए, आप देखेंगे 6 माह के अंदर आप इस पूरी बुक की हदीसों को याद कर सकते हैं। छोटी छोटी तो हैं, कितने लोग नियत करते हैं, बस हो गई याद इंशाल्लाह। और फिर जब ये हदीसें ज़ुबानी याद होती है ना, तो वक्त बे वक्त आप उल्टी सीधी बातें नहीं लोगों को कोट करते। आज मसला ही है, जो दिल करता है पोस्ट में डाल के भेजते हैं। हदीस के लफ्ज़ों में बड़ा मज़ा है। अभी मैंने अरबी पढ़ी है ना, तो मेरा दिल कह रहा है कि कभी आपको सिर्फ इस अरबी से समझ आ जाए और मुझे नीचे का पार्ट ना पढ़ना पड़े जो उर्दू में, क्योंकि हमें उर्दू में वो लज्जत मिल ही नहीं सकती जो अरबी के अल्फाज। और सबसे बड़ी बात, किस की ज़ुबान मुबारक के अल्फाज हैं? नबी सल्लम, जिनसे हम इतनी मोहब्बत करते हैं। तो हदीसों को याद कीजिए, ये हमारे कल्चर में कम है। अमूमन लोग हाफिज़ बनते और बनाते हैं, उस पर बहुत ही ज़ोर भी देते हैं, लेकिन अहादीस का हिफ्स ये तो बड़े शऊर बड़े नसीब से मिलता है। तर्जमा सुन लीजिए ताकि आप मज़ीद इसको सीखने के लिए मोटिवेट हो सकें। आपने फरमाया, मैं ज़मानत देता हूँ जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ देगा, इसे जन्नत के गिर्दो नवाह यानी सराउंड सबर्ब्स में घर मिलेगा। और मैं ज़मानत देता हूँ कि जो मजाक करते वक्त भी झूठ को छोड़ देगा, इसे जन्नत के वस्त में घर मिलेगा। और मैं ज़मानत देता हूँ जिस शख्स का अखलाक अच्छा होगा, इसे जन्नत के ऊपर वाले हिस्से में घर मिलेगा। हसन दर्जे की रिवायत है अबू दाऊद में 4800 पेज पे है, और सही तरगीब में 139 है। आपने नोट की एक चीज़, गिर्दो नवा सराउंड्स चारों तरफ सबर्ब्स कहते हैं, दूसरा घर बीच में और ऊपर के टॉप फ्लोर में। जिसने ये तीनों काम कर लिए तो उसका जन्नत के हर कोने में घर होगा। ये है खूबसूरत बात इसमें से समझने की। दिल कर रहा है कि घर हो अपना खूबसूरत सा, हो जन्नत में जहाँ जाए वहाँ आपका घर हो। दुनिया में कोई इतना खुशकिस्मत है कि जिस जगह जाए उसका वहाँ घर हो? मुश्किल है ना। मेरे हाल बिल गेट के भी इतने घर नहीं होंगे। आप अल्लाह के रस्तों में निकलिए, हर घर आपका घर है, हर शहर में आपका घर है, हर मुल्क में आपके लोग हैं। ये है वो यूनिवर्सल और ग्लोबल फैमिली जिसका तसव्वुर बिलियनेरियंस भी नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे दूं, बड़े से बड़े लोग भी बड़े से बड़ा भी घर बना लेना, चार कनाल का, आठ का। पाकिस्तान में बड़े से बड़ा घर मेरा ले 8 कनाल से ऊपर के तो घर को घर नहीं कहेंगे, फिर तो वो कैसल बन जाएगा 10 का। अमूमन लोगों के 2, 4, 6, 8 कनाल, 10 कनाल कर लीजिए, संभालेगा कौन? रहना तो एक ही कमरे में है। लेकिन दुनिया में शायद कम लोग हो जिनके बारे में आप कहें कि उनका हर शहर में घर है। आप अच्छा अखलाक इख्तियार करें तो हर घर आपका है। और आप अल्लाह का काम करें तो हर शहर मुल्क में आपका घर है। जिनके हाथ में जेब में कुछ नहीं होता उनके पास सब जगह घर होते हैं, और जिनकी जेबें पैसों से भरी होती हैं वो बेचारे लाइबिलिटीज़ और किस्तों में फंसे होते हैं। बाहर के मुल्कों में बहुत सारे लोग अपना एक घर पे करने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। आपको बताऊं, बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में घर उनके नाम होता है, 20-20 साल की किस्त होती है। और अक्सर लोग जो फौत होते हैं तो अपने बच्चों को कर्ज़ का तोहफा देकर जाते हैं, फिर वो किस्तें बच्चे देंगे, फिर कई, और वो 20 साल में वो घर इतना पुराना होता है कि दिल से उतर चुका होता है, फिर नया ख्वाब देखते हैं। फिर बच्चे ये नहीं कहते चलो इस घर के लिए बाप ने इतनी कुर्बानियाँ दे दी थी हम इसमें रहे, वो कहते नहीं हमें और बड़ा चाहिए, फिर वो बेचेंगे तो एक और बड़ा लेंगे, उसमें कर्जे लेंगे। सारी ज़िंदगी एक घर नहीं अपना होता। अल्लाह कहता है जन्नत में हर कोने में तुम्हारा घर होगा। है नफ़े का सौदा के नहीं, काबिल रश्क हैं ये लोग के नहीं। जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर अपने आप को लेंगे, आपको महसूस होगा कि आप इसकी रग़बत करें, और दुनिया में भी फिर अल्लाह आपको सब कुछ देगा। फिर आप देखिए कि यहाँ पहली बात जो समझने की है, थोड़ी सी इस हदीस पे गौर भी कर लेते हैं। पहली बात है कि मुसलमान से लड़ना या झगड़ना ये कुफर है, क्योंकि इसे मुस्लिम वहदत टूटती है। ये जामे सगीर की एक रिवायत से पता चलता है, 3595 से। दूसरी बात यह कि झूठे पर अल्लाह की लानत है। अल्लाह ने झूठ बोलने वाले या झूठे शख्स पर अपनी लानत पेश की है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो झूठ को अपना शौहर बना लेते हैं। ज़िंदगी में झूठ इस तरह रच बस जाता है कि उनको एहसास तक ख़त्म हो जाता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। सूरह आले इमरान की आयत 61 है। फिर इसी तरह हदीस बहुत सारी हैं जिसको इस वक्त हम नहीं डिस्कस कर सकते। बस याद रखिए, तीन कामों में झूठ बोलने की इजाज़त दी गई है। एक है दौराने जंग, दूसरा लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, और तीसरा शौहर को बीवी से और बीवी को शौहर से मिलाने के लिए। ये मुस्लिम की रिवायत में 1605 आपको हवाला मिल जाएगा इसका, और इसी तरह अबू दाऊद में 4920। तो क्या करना है, आज से झगड़ा छोड़ना है। कब छोड़ेंगे झगड़ा? आप कहते हैं जब लोग मुझसे झगड़ना छोड़ देंगे, तो फिर आपने तो नहीं छोड़ा ना। जब मेरे मियाँ बहुत बाखलाक हो जाएंगे तो मैं भी झगड़ा छोड़ दूंगी, जब मेरे बहन भाई बहुत नाइस हो जाएंगे तो मैं भी झगड़ा छोड़ दूंगी, तो फिर आपने नहीं छोड़ा, वो आपसे छुड़वा लिया गया। अल्लाह ना करे हम में से कोई किसी बड़े ही बदमिजाज के साथ रहता हो। गुस्से का तुंक, माथे पे तेवरी, ज़ुबान गंदी, याद रखिए कि बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के साथ रहना, बट जन्नत बड़ी खूबसूरत है, अवॉइड कीजिए। मैं इसको एक छोटी सी मिसाल से समझा के आगे चलूँ ताकि आपको अमली तौर पर रहनुमाई मिले। यहाँ बहुत कम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं सिस्टर्स में से, लेकिन जो भी चलाएँ, अब घर वालों को तो देखा ही होगा ना, अच्छा ड्राइवर कौन होता है? अगली गाड़ी को टकराए और फिर रुके, कोई आगे पुली आ रही है या कोई ऑब्स्टिकल है तो जाकर ठक से गाड़ी उधर लगे फिर रुके। एक होती है ब्रेक गाड़ियों में, तो एक और क्या होती है? हैंड ब्रेक होती है। दो हैं गाड़ी में ब्रेक, अगर ब्रेक काम ना करे, और ब्रेक काम करती है ऐसे टिक 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 स्लो करके, यानी यहाँ ब्रेक लगाएंगे तो वो शायद अगले कोने तक जाकर फिर गाड़ी रुकेगी। कभी इतना वक्त ही नहीं होता बीच में इतना लेने का, तो टिक हैंड ब्रेक, यहाँ लगाई यहाँ रुक गई गाड़ी। बस झगड़ा क्या है, हैंड ब्रेक, टकराव से पहले रुक जाइए, आपके घरों के आधे से ज़्यादा झगड़े ख़त्म हो जाएंगे अगर आप दूसरे के झगड़ने से पहले आप खामोश हो जाएं। आपको समझ आने लग गई है अब इसके बाद आवाज़ ऊंची होनी है, अब इसने उठाकर कोई चीज़ मुंह पे मारनी है, पीछे चुप कर जाए। और अक्सर ख़वातीन जिनकी यानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मर्द होते हैं कि जो किसी भी नफ्सियाती उलझन का शिकार है, झगड़े करते हैं, उन औरतों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मार्ट होना चाहिए। देखिए, गर्मी हो और फ्रस्ट्रेशन हो और रात जाते के ऊपर उलझने डाली हो, झगड़ने को हर बंदे का दिल करता, बिजली गई झगड़ा और भी बहुत कुछ, आप अपने लिए कमल की बात लिखें और दुआ करें कि अल्लाह मुझे वो फहम और शऊर दे दे। मैं ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में हूँ, आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप किसी स्कूल में काम करते हैं, आप किसी जगह मिलजुल के दीन का काम कर रहे हैं, झगड़े की नौबत ना आए, मैं उससे पीछे रुक जाऊँ। होता पता क्यों झगड़ा? हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं। मैं एक दफ़ा बोल लूँ, फिर जो होगा देखेंगे। बस किसी ने कहा कि इधर सफाई नहीं की, हालांकि आप करके गए, बस शुरू हो गए। मैं तो सुबह से आई थी, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने ये भी किया। अब इस पर अगले को गुस्सा आएगा, अगर सुबह से आई तो किया क्या, देखो ये पड़ा हुआ है, झगड़ा होगा। झगड़ा क्या है कि आप सफाइयाँ ना पेश करें, अल्लाह ताला के आगे सुरखरू रहिए, ठीक है? क्या ये वो बातें हैं जिसकी मुझे और आपको ज़रूरत है? बताइए, ज़रूरत है ना? जितनी मुझे और आपको इन बातों की ज़रूरत है आज के दौर में, शायद इससे पहले कभी ना थी। इतनी ज़रूरत है इन चीज़ों की। ज़रूरत ये है कि आप और मैं अपने आप को इस तरह का बना लें कि इस दुनिया से जब हम वापस जाएं तो लोग हमारे बारे में बुरा ना कहें, अच्छा कहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलिए। इसलिए कि ये ज़िंदगी का वो हुस्न है जो आपको दूसरों के नज़रों में भी हसीन और जमील बना देगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो क्या है? अल्लाह ताला के 99 नाम शुमार करना। यानी 7 टॉपिक चले हैं हमारे किरदार से मुतल्लिक, कैरेक्टर बिल्डिंग के, अखलाकियात से मुतल्लिक, ढके छुपे में अपने आप को अल्लाह के करीब करने से। अब एक छोटी सी चीज़ आ रही है जो याद करने से मुतल्लिक है, यानी आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी, सच है कि नहीं? आप कहते हैं अल्लाह के नाम याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन झगड़े के वक्त पीछे हटना मुश्किल है कि नहीं? किरदार साजी मुश्किल है। मैंने आपसे भी कहा कि ये हदीसें याद कर ले, 120 ही हदीसें हैं ना, रोज़ की एक करेंगे तो 4 माह में याद होंगी, रोज़ की 2 करेंगे तो 2 माह में हो जाएंगी, मुश्किल तो नहीं है। लेकिन सबसे मुश्किल जो है वो किरदार साजी है, ठीक है? गुस्सा आया हो बेहतरीन दुआ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, और अल्लाह के गज़ब को याद कर लें, अल्लाह के गुस्से को याद कर लें, अजर को याद कर लें। खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, वुज़ू कर लें, उठकर 2 रकत नमाज़ पढ़ लें और मुंह को सी लें, नजा मन समत कल पढ़ा हमने, ठीक है? इंशाल्लाह चलिए इसको देखते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम शुमार करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इन्न लिल्लाहि ताला 99 असमान, मियतन इल्ला वाहिदन, मन अहसाहा दखल अल जन्ना। बिला शुबा अल्लाह ताला के 99 नाम हैं। मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि हदीस में 99 का लफ्ज़ क्या है? बोल सकते हैं, बोलिए जिसको पता है। मियतन इल्ला वाहिदन, 100 मगर एक काम। जैसे आप कहते हैं 9 जमा 9 99, तो ये अरबी लैंग्वेज में गिनती किस तरह करते हैं? 99 क्या है? मियाँ कहते 100 को, इल्ला वाहिदन मगर एक, यानी 100 है लेकिन उसमें से एक कम, ये 99 है। कुरान में कभी ये लफ्ज़ आया? 90, 99, 99 दुमियाँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। जी बिल्कुल। अरबी की गिनती किस किस को आती है? 10 तक आती है। चले थोड़ी सी आगे याद करें, ये भी अपना होमवर्क गोल बना ले। मैंने अरबी की गिनती याद करनी है, क्या पता इसी की वजह से अल्लाह में किसी ऐसे अरब मुल्क में ले जाए जहाँ हम बड़ी शौक़ से रग़बत से इबादत कर सकें और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। बहरहाल फरमाया अल्लाह ताला के 99 नाम है, 100 में से एक कम, जिसने ने शुमार किया वो जन्नत में दाखिल हो गया। ये बुखारी की रिवायत है 2736, और किताबु शुरूत है, और मुस्लिम में है 2677। क्या पता चला कि अल्लाह के नामों को अस्माए हुस्ना कहते हैं। देखिए यहाँ एक गलती का इजाला करूँगी, आप लोग लिखिए अपने पास। बाज़ लोग क्या कहते हैं? अस्माउल हुस्ना, गलत है ये। अक्सर यूट्यूब पे जो टाइटल्स लिखे होते हैं उसमें यही लिखा होता है अस्माउल हुस्ना। अगर आप देखें ग्रामर की रोशनी में, अस्माउल हुस्ना मरकब इजाफी है, हुस्ना के नाम। अब ये हुस्ना कौन है किसी को नहीं पता। दो तरह से बोल सकते हैं आप, अल अस्मा उल हुस्ना, ये मरकब तौसीफी है, अच्छे अच्छे नाम, हुस्ना खूबसूरती वाले, ठीक है? या फिर सिंपल पढ़िए अस्माए हुस्ना, अल लगेगा तो दोनों में लगेगा, नहीं लगेगा तो दोनों में नहीं लगेगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, अल्लाह ताला का नाम जो जाती है ना वो है अल्लाह, बाकी सब सिफाती हैं। ये क्या फ़र्क होता है? देखिए, आपका अपना एक नाम होगा ना, बुशरा, लेकिन हो सकता है कोई लाड में आपको क्या कहे, गुड़िया, गुड्डी, और क्या कहते हैं, नन्नी, गुड्डो, पाकिस्तान में गुड्डो बड़ा बोलते हैं। और अच्छा, कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमारी ख़ास सिफात की वजह से होते हैं ना, जैसे कोई बहुत बहादुर हो तो आप कहते हैं ये मेरा शेर है, और अगर कोई बहुत सखी हो तो कहते हैं ये मेरा उस्मान है। तो ये अल्लाह के जो नाम है ना, सिफाती, ये सिफते हैं, रहमान रहीम, अल मालिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मोमिन, अल मुइज़, अल मुज़िल, ये सब अल्लाह की सिफते हैं। तो आप सोचिए, अल्लाह की सिफतें जितनी हैं उतने नाम तो आपको मुझे पता ही नहीं। मत सोचिए कि 99 है। अल्लाह तो सूरह कहफ के एंड पे क्या कहते हैं, तुम अल्लाह के नाम लिखना चाहो सारी कोशिश कर लो, नहीं लिख सकते। सूरह लुकमान में क्या, सारे दरख्तों की लकड़ियाँ कलम बने, समंदरों की स्याही बन जाए, इतनी और भी जमा हो जाए, लेकिन उसकी बातें नहीं पूरी होती। वक्त के साथ, और अब जितना ये एक्सप्लोरर हो रहे हैं ना, न्यूक्लियर एक्सप्लोरर, एटॉमिक, और आज कंप्यूटर साइंसेस आ गई, अल्लाह की सिफतें खुलती जा रही हैं। अभी तो वो कली थी ना पहले, अब फूल बन रही है, अंदर से खिल खिल के अल्लाह की सिफात आ रही हैं। जितना लोग समंदरों की तहों में डूब रहे हैं, जितना पहाड़ों से ऊपर जा रहे हैं, वसतों में जा रहे हैं, उनको सिफात दिखती हैं। तो आपने अल्लाह की सिफात याद करनी है। सवाल पैदा होता है कि एहसास क्या मुराद है, शुमार करना। तो इसमें चंद चीज़ें हैं। नंबर एक लिखी, ईमान लाना। नंबर दो, इनको गिनना। नंबर तीन, इन्हें एक एक करके बतौर तबरुक, अखलास के साथ पढ़ना, यानी इनको प्यार से पढ़िए। चौथी चीज़ है इनको हिफ्ज़ करना, और पांचवी क्या कि इसके मानी को जानना, और छठी चीज़ है इनसे खुद को मुत्तसिफ करना, यानी अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करना। अस्माउल हुस्ना की जो सीरीज़ है उसमें ये सारे पॉइंट्स लिखाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका मेरा काम क्या है कि अल्लाह ताला के नामों पे गौर व फिक्र करते हुए एंड तक अपने अंदर ये खूबियाँ लाने की कोशिश कीजिए। बस रिवायात में 99 नामों का जिक्र भी किया गया, लेकिन ये रिवायात ज़यीफ़ हैं, और उलमा ने इन्हें मुदरज यानी रावियों का इजाफा करार दिया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का हिस्सा नहीं। और उलमा ने यह भी वजाहत किया कि अल्लाह के नामों की तादाद 99 में मुनहसर नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा है। ये तफसीर अहसनुल बयान के सफ़ा नंबर 469 पर आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए, कितने लोगों को शौक़ आ रहा है अल्लाह के नाम याद करने का? आते ये आज का एक और होमवर्क लिख लें, अस्माउल हुस्ना याद करें, थोड़े से नाम मिलके सब पढ़े।
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري الغفار الغفار الكهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكام العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
آپ دیکھیے کہ ان ناموں پہ جب آپ محبت سے غور کرتے ہیں نا تو آپ کو اللہ پہ پیار آتا ہے. آ رہا تھا آپ کو پڑھتے ہوئے غور کرنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. میں آپ کا کام نہیں بڑھانا چاہ رہی, اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے کم از کم تھنگس ٹو ڈو میں یہ سب کچھ لکھ تو سکتے ہیں نا, اور جتنا زیادہ اس میں ہمارا دل خوش ہوگا اس وقت اتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیار اور محبت کریں گے, اور اس میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. ٹھیک ہے.